9 मार्च दिन भर दिन बुधवार, मैं हूं रेहान फदल। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के विश्व सांस्कृतिक कार्यक्रम को सशर्त मंजूरी दी।
श्री श्री रविशंकर के कार्यक्रम को स्वीकृति देने या स्वीकृति नहीं देने में हमारे मंत्रालय का कोई रोल नहीं। मुझे विश्वास है कि श्री श्री रविशंकर जी के सहारे हमें गंगा के कार्यक्रम में आगे वो हमारे साथ होने वाले हैं।
T20 विश्व कप में धर्मशाला में खेला जाने वाला भारत पाकिस्तान मैच अब कोलकाता में होगा।
I would like to announce that a decision has been taken by the ICC to relocate the
दुनिया जहान में चर्चा होगी हाल में ईरान में हुए चुनाव की, जहां कट्टरपंथियों पर सुधारवादी भारी पड़े हैं। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार अमल चौधरी से। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने यमुना तट पर श्री श्री रविशंकर के प्रस्तावित वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल कार्यक्रम को कराने की इजाजत दे दी है। NGT ने कहा है कि कार्यक्रम जारी रह सकता है, लेकिन अपने संवैधानिक दायित्व ना पूरा करने के लिए दिल्ली प्रदूषण बोर्ड को 1,00,000 रुपये और दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA को 5,00,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने दावा किया है कि उनके वैज्ञानिकों ने छोटे परमाणु हथियार विकसित कर लिए हैं, जिन्हें बैलिस्टिक मिसाइलों पर लगाया जा सकता है। सरकारी नियंत्रण वाली मीडिया KCNA में यह दावा पहले भी किया जा चुका है, लेकिन किम जोंग उन ने खुद यह दावा पहली बार किया है। इस साल के शुरू में परमाणु और रॉकेट परीक्षण के बाद संयुक्त राष्ट्र की ओर से उत्तर कोरिया पर लगाए गए कड़े प्रतिबंधों के बाद वह इस तरह के दावे अधिक कर रहा है। ईरान द्वारा 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण करने की खबरें आ रही हैं। लगातार दूसरे दिन हुए इस परीक्षण पर अमेरिका ने सख्त राजनयिक प्रतिक्रिया की बात कही है। इन मिसाइलों पर इसराइल को खत्म किया जाएगा नाम से नारे भी लिखे हुए हैं। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के एयरोस्पेस डिवीजन के प्रमुख आमिर अली हजीजादे ने कहा कि ये परीक्षण इस बात का सबूत है कि ईरान खुद की रक्षा करने में सक्षम है। उन्होंने कहा
و طبیعتاً هر چه دشمنان ما فشار و تحریم ها رو بیشتر بکنن واکنش
ظاهر ہے پرتبندھوں کے روپ میں ہمارے دشمن ہم پر جتنا ادھک دباؤ ڈالیں گے ہم اس سے نپٹنے کے اتنے ہی طریقے ڈھونڈ نکالیں گے اور یہ پریکشن اسلامک ریولیوشنری گارڈز اور ہمارے انیہ سہیوگیوں کی طرف سے ویسا ہی ایک جواب ہے ہم ہر گزرتے دن کے ساتھ اور آرتھک ادھک آتم نربھر بنیں گے اور اپنی شمتاؤں کو بڑھائیں گے ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के एयरोस्पेस डिवीजन के प्रमुख आमिर अली हजीजादे। यूरोपियन यूनियन EU के सदस्य स्लोवेनिया ने कहा है कि वो प्रवासियों के लिए अपनी सीमाओं पर बुधवार से सख्ती बढ़ा रहा है। स्लोवेनिया के गृह मंत्रालय ने कहा है कि प्रवासियों को देश में घुसने की इजाज़त केवल मानवीय आधार पर या फिर शरण लेने का दावा पेश करने वालों को ही मिलेगी। इस घोषणा के बाद स्लोवेनिया के पड़ोसी देश सर्बिया ने भी इसी तरह के प्रतिबंधों की घोषणा की है। हालांकि सर्बिया EU सदस्य नहीं है। ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया और मैसेडोनिया पहले ही प्रवासियों पर कड़े प्रतिबंध लगा चुके हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच धर्मशाला में होने वाला वर्ल्ड T20 मैच अब कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने जगह बदलने की मंजूरी दे दी है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पहले सुरक्षा मुहैया कराने पर असमर्थता जताई थी और पूर्व सैनिकों के ऐतराज़ का हवाला दिया था। इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अपनी टीम की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। ICC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डेविड रिचर्डसन ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैच की नई जगह ईडन गार्डन्स होगी। BBC समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। दिल्ली में यमुना किनारे आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के 3 दिवसीय विश्व सांस्कृतिक कार्यक्रम को नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने सशर्त मंजूरी दे दी है। कार्यक्रम शुरू होने से पहले आर्ट ऑफ लिविंग संस्था को अग्निशमन विभाग से मंजूरी लेनी होगी और कार्यक्रम स्थल के ढांचे की स्थिरता सुनिश्चित करनी होगी। NGT ने आर्ट ऑफ लिविंग पर 5,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया है, जबकि DDA पर भी 5,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। पर्यावरणविद आरोप लगाते रहे हैं कि पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील इस बाढ़ क्षेत्र में लाखों लोगों की मौजूदगी में इतने बड़े स्तर पर कार्यक्रम करना इलाके के लिए अच्छा नहीं है। विनीत खरे की रिपोर्ट।
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक राष्ट्रीय ग्रीन ट्राइब्यूनल ने अपने आदेश में आर्ट ऑफ लिविंग पर 5 करोड़ का जुर्माना, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति पर 1 लाख का जुर्माना और दिल्ली विकास प्राधिकरण पर 5 लाख का जुर्माना लगाते हुए श्री श्री रविशंकर के इस कार्यक्रम को हरी झंडी दे दी। ट्राइब्यूनल ने अपने आदेश में आर्ट ऑफ लिविंग से कल गुरुवार तक ये आश्वासन देने को कहा कि यमुना में एंजाइम्स का निकास नहीं होगा और पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। ट्राइब्यूनल ने आर्ट ऑफ लिविंग से कहा कि वो जुर्माने का पैसा कार्यक्रम के शुरू होने से पहले जमा करे और पूरे इलाके में बायोडायवर्सिटी पार्क का विकास करे। 2 दिन चली सुनवाई में ट्राइब्यूनल ने सरकारी एजेंसियों से कड़े सवाल पूछे थे। ट्राइब्यूनल ने आर्ट ऑफ लिविंग को दी गई अनुमति पर केंद्र और दिल्ली सरकार से सवाल किए। जब बात जल संसाधन मंत्रालय की अनुमति पर पहुंची तो ट्राइब्यूनल को बताया गया कि मंत्रालय से अनुमति मांगी ही नहीं गई। मीडिया से बात करते हुए जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने कहा,
श्री श्री रविशंकर के कार्यक्रम को स्वीकृति देने या स्वीकृति नहीं देने में हमारे मंत्रालय का कोई रोल नहीं। मुझे विश्वास है कि श्री श्री रविशंकर जी के सहारे हमें गंगा के कार्यक्रम में आगे वो हमारे साथ होने वाले हैं और वो हमारे गंगा के कार्यक्रम के प्रेरक तत्व रहे हैं।
11 से 13 मार्च को होने वाला ये कार्यक्रम आर्ट ऑफ लिविंग के 35 साल पूरे होने का समारोह है। आर्ट ऑफ लिविंग की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इस कार्यक्रम में दुनिया भर से 37,000 कलाकार हिस्सा लेंगे, जिनमें 8,000 संगीतकार 40 अलग अलग तरह के वाद्य यंत्र बजाएंगे। आज इस मुद्दे पर संसद में भी हंगामा हुआ। जब मीडिया में सेना के जवानों को इस कार्यक्रम के लिए पॉन्टून पुल बनाते हुए दिखाया गया तो केंद्र सरकार की भारी आलोचना हुई। आलोचकों ने सवाल उठाए थे कि सरकार सेना का इस्तेमाल एक निजी कार्यक्रम के लिए क्यों कर रही है। आज मैं भी तैयारियों का जायजा लेने कार्यक्रम स्थल पहुंचा।
मैं इस वक्त हूँ जो यमुना का बाढ़ क्षेत्र है, वहाँ पर अंदर जाने के लिए भारी सुरक्षा है। लोग जो मेटल डिटेक्टर है उससे होकर आ रहे हैं। यमुना के ऊपर पॉन्टून ब्रिज बना है, हम उसको क्रॉस करके यहाँ पर आए हैं। लेकिन अगर आप पार करके आना चाहें तो मैं यहाँ बता दूं कि इतनी जबरदस्त बदबू है कि हमें कई पुलिस वाले मिले, वो नाक बंद करके यहाँ पर आ रहे थे।
वहीं मेरी मुलाकात कार्यक्रम का स्टेज तैयार करने वाले मशहूर आर्ट डायरेक्टर और प्रोडक्शन डिजाइनर नितिन देसाई से हुई।
तो उसमें हमने पंच महाभूतों का यूज करते हुए जल, धरती, वायु और पानी और आकाश, इनको सब समेटा और ये 155 कंट्री से इतने कलाकार आ रहे हैं। तो एक कलाकार की उन कलाकारों को इस तरह से
तो कितने कलाकारों को ये अकोमोडेट कर पाएगा स्टेजेस, थोड़ा बता पाएंगे कितने कलाकार?
अभी जो डिजाइन है उसमें 8,000 म्यूजिशियंस है और 10,000 डांसर्स है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का उद्घाटन 11 मार्च को करेंगे, लेकिन इतने विवादों के बाद अब उनके इस कार्यक्रम में शामिल होने पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पहले ही इस कार्यक्रम में शामिल होने से मना कर चुके हैं। विनीत खरे, बीबीसी दिल्ली।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
विश्व कप T20 के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच धर्मशाला में होने वाले मैच को कोलकाता शिफ्ट कर दिया गया है। पीसीबी चीफ शहरयार खान द्वारा लिखी चिट्ठी और सुरक्षा को लेकर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पल पल बदलते बयानों के चलते आईसीसी ने इस मैच का वेन्यू बदलने की घोषणा की है। हालांकि बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को धर्मशाला में मैच कराने के लिए राजी करने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। आदेश कुमार गुप्त की रिपोर्ट।
I would like to announce that a decision has been taken by the ICC to relocate.
मैं आपको बताना चाहता हूं कि ICC ने यह निर्णय किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच धर्मशाला में आयोजित होने वाला मुकाबला कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। मैच की तिथि और समय वही रहेगा, 19 मार्च शाम 7:30 बजे। ये शब्द हैं ICC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डेव रिचर्डसन के, जिन्होंने आज दिल्ली में इस बात का ऐलान किया कि 19 तारीख को अब धर्मशाला में भारत और पाकिस्तान आमने सामने नहीं होंगे। उल्लेखनीय है कि वहां ICC विश्व कप 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट का मुकाबला खेला जाना है। दूसरी तरफ कल तक BCCI के टूर्नामेंट डायरेक्टर MV श्रीधर दावा कर रहे थे कि धर्मशाला के प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि सभी सुरक्षा तैयारी पूरी है और पाकिस्तानी जांच दल भी संतुष्ट है। अब तमाम समीकरण बदल चुके हैं और ICC ने आखिरकार खुद आगे बढ़कर तमाम अटकलों पर विराम लगाया। ICC के कार्यकारी अधिकारी डेव रिचर्डसन ने इस कदम को उठाए जाने के पीछे कारण बताते हुए कहा।
It's been taken following consultation with the BCCI.
ये निर्णय लेने से पहले BCCI, संबंधित राज्य संघ, BCCI और ICC के सुरक्षा सलाहकारों पर विचार किया गया। मीडिया में लगातार आ रही खबरों और जनता के विचारों के बाद सुरक्षा को लेकर सवाल बढ़ते जा रहे थे। इनमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल थे। उन्हें प्रदर्शन और जन संपत्ति को नुकसान पहुँचाए जाने का डर था। हमारी चिंता अनिश्चितता और सुरक्षा दोनों को लेकर थी। डेव रिचर्डसन के शब्द। तो भारत और पाकिस्तान के बीच धर्मशाला में होने वाला मैच अब कोलकाता चला गया। इसके लिए BCCI के सचिव अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया।
देखिए, इस बात का आप क्या अनुमान लगा सकते हैं कि आपको कोई और मिले और राज्य सरकार उसका विरोध ना करे। राज्य की छवि खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत की छवि को गिराने में राज्य की सरकार की ओर से कोई कमी नहीं रही। और प्रतिदिन स्टेटमेंट बदलना, ये शायद उनकी आदत बन गई थी। इसलिए मैंने कहा उनके लिए परिवार पहले, पार्टी बाद में और देश अंत में। तो देश के लिए जो छवि खराब की है उसकी भरपाई करनी मुश्किल होगी।
अब कोलकाता में मैच जाने से धर्मशाला को क्या नुकसान होगा, इसे लेकर डेव रिचर्डसन ने कहा कि इस पर बाद में गंभीरता से विचार किया जाएगा। वैसे मैच का आयोजन स्थल बदलने की पाकिस्तान की मांग पूरी होने से भी इस मुकाबले को लेकर अटकलें पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तान अपने उन नागरिकों की सुरक्षा की भी गारंटी चाहता है जो ICC विश्व कप 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट देखने भारत आएंगे। तो गेंद एक तरह से अभी भी पाकिस्तान के पाले में है, और जब तक पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भारत नहीं पहुंच जाती या वहां की सरकार खुद कुछ नहीं कहती, तब तक अंतिम निर्णय पर पहुंचना मुश्किल है।
भारत और पाकिस्तान के बीच धर्मशाला में होने वाला मैच अब कोलकाता में। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद करने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में बोलते हुए संसद चलने देने के लिए विपक्ष का आभार प्रकट किया। विपक्ष की आलोचना के बजाय संसद में उनके द्वारा उठाए गए प्रश्नों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि सदस्यों की सक्रियता की वजह से ही सभी मंत्रालय के मंत्री और अधिकारी पूरी जानकारी जुटाने के लिए काफी मेहनत करते हैं। सलमान रावी की रिपोर्ट।
मैं समाप्त करने से पहले एक मशहूर शायर निदा फाजली की जो बात है, अभी अभी उनका स्वर्गवास होगा, उनकी बात कहकर के मेरी बात मैं समाप्त करूंगा।
यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान कुछ इस शायराना अंदाज में नजर आए, और अपना अभिभाषण उन्होंने निदा फाजली की इन पंक्तियों से खत्म किया।
सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो।
प्रस्ताव पर बोलते हुए नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर भी खूब चुटकियां ली। उन्होंने कहा कि कभी कभी उन्हें ऐसा लगने लगता है मानो जैसे कांग्रेस पार्टी को कोई वरदान मिला हो।
मृत्यु का ऐसा वरदान है कि मृत्यु कभी बदनाम नहीं होता, कभी मृत्यु पर आरोप नहीं लगते। कोई मरे तो वह कैंसर से मरा है, आरोप कैंसर पे जाता है। बड़ी आयु में मरे तो उम्र के कारण मरे हैं। कभी कभी लगता है कांग्रेस को ऐसा कोई वरदान है। वरदान इस अर्थ में है कि अगर हम कांग्रेस की आलोचना करें तो आपने मीडिया में देखा होगा विपक्ष पे हमला, विपक्ष पे आरोप।
प्रधानमंत्री का कहना था कि उनकी सरकार जब भी कोई काम करना चाहती है तो कांग्रेस उस काम का श्रेय खुद लेना चाहती है। उन्होंने गंगा की सफाई के अभियान के बारे में चर्चा करते हुए कहा,
अब जैसे मान लीजिए आज हम गंगा सफाई करते हैं तो स्वाभाविक से आपसे आवाज उठेगी, ये तो हमने शुरू किया। सही बात है, श्रीमान राजीव गांधी जी ने इस पर बल दिया। अब सवाल ये उठता है कि शुरू किया उसकी क्रेडिट लेने के उत्साह में ये भी तो जवाब देना पड़ेगा कि 30 साल के बाद गंदी क्यों है।
प्रधानमंत्री के भाषण के फौरन बाद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सीताराम येचुरी ने सफाई देने की कोशिश की, मगर सभापति ने उनकी अपील को खारिज कर दिया।
येचुरी जी, प्लीज सिट डाउन। येचुरी जी, आई थिंक वी वेंट ओवर दिस
वहीं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विपक्ष ने कई संशोधन पेश किए जिन्हें सदन में पास किया
गया।
हालांकि राज्यसभा में प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान विपक्ष ने ज्यादा शोर शराबा नहीं किया और प्रधानमंत्री ने भी विपक्ष से लंबित विधेयकों को पारित करने की अपील भी की। जानकारों को लगता है कि जिस तरह राज्यसभा में बुधवार को विपक्ष की भूमिका देखी गई उससे भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के बीच की तल्खियां कम होने के आसार लग रहे हैं।
यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता, यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता। मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो।
सलमान रावी, BBC दिल्ली।
खबर सच है अगर BBC पर है।
ये BBC है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। और अब अमरीकी राष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी के दावेदार बर्नी सैंडर्स ने पार्टी की प्रमुख दावेदार हिलेरी क्लिंटन को मिशिगन प्राइमरी में हराकर अपनी बहुत बड़ी जीत दर्ज की है। इस जीत से 15 मार्च को फ्लोरिडा, ओहायो और 3 अन्य बड़े राज्यों में होने वाली महत्वपूर्ण प्राइमरी से पहले सैंडर्स के अभियान को बढ़त मिली है। बर्नी सैंडर्स ने कहा,
What we have seen is in poll after poll, state after state, what we have done is created the kind of momentum.
हमने एक के बाद एक चुनाव और राज्यों में देखा है कि हमने एक तरह का मोमेंटम पैदा कर दिया है जो जीत के लिए जरूरी होता है। इसलिए आज एक बार फिर मिशिगन में जबरदस्त रात है। हम आप सब लोगों के समर्थन के शुक्रगुजार हैं और हमें आशा है कि अगले सप्ताह इलिनॉय, ओहायो और मिसूरी में भी हमें इसी तरह की सफलता मिलेगी। बर्नी सैंडर्स के शब्द। दूसरी तरफ रिपब्लिकन खेमे में डोनाल्ड ट्रंप की जीत का सिलसिला जारी है। आइए सीधे चलते हैं वॉशिंगटन ब्रजेश उपाध्याय के पास। ब्रजेश उपाध्याय से संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, फोन इस बीच शायद उनसे फोन संपर्क टूट गया है। हमारा प्रयास जारी है अगर उनसे फोन संपर्क दोबारा स्थापित हो पाता है। इस बीच हम बात करते हैं दुनिया जहान की। ईरान में नई संसद और देश की शीर्ष धार्मिक संस्था मजलिसे खबरगान के लिए हुए चुनाव में कट्टरपंथियों पर सुधारवादी भारी पड़े हैं। जानकार इसे ईरान के लिए बड़ा बदलाव मान रहे हैं। ईरान के लिए इस बदलाव के क्या मायने हैं और चुनाव के बाद ईरान के सामने कौन सी चुनौतियां हैं, दुनिया जहान में इसी हफ्ते इन्हीं सवालों का जवाब तलाश रहे हैं संदीप सोनी।
दुनिया जहान।
در سال 92 مردم با صدای رسا به دنیا گفتند ما اعتدال را میخواهیم।
ये आवाज है ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी की जो कह रहे थे,
देश की जनता ने सारी दुनिया को बड़े ही साफ शब्दों में बता दिया है कि हमें कट्टरपंथी नहीं उदारपंथी चाहिए। हम दुनिया के साथ संवाद चाहते हैं, टकराव नहीं। हम तर्कों के साथ दुनिया से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं।
हसन रूहानी का ये बयान ईरान में उन दो चुनावों के नतीजे आने के बाद आया है जिसे ईरान के भूत, वर्तमान और भविष्य के हिसाब से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ईरान में बीते दिनों दो अहम चुनाव हुए हैं, पहला नई संसद के लिए और दूसरा असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के लिए। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स धार्मिक नेताओं का सदन है, इसे फारसी में मजलिसे खबरगान कहा जाता है। ये ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता की नियुक्ति करता है। ये सदन 8 वर्षों के लिए चुना जाता है, इसलिए ईरान की राजनीति में इसका प्रभाव संसद से ज्यादा होता है। चुनाव से राष्ट्रपति हसन रूहानी के हाथ मजबूत हुए हैं क्योंकि असेंबली में सुधारवादी और उदार विचार वाले उम्मीदवार कट्टरपंथियों पर भारी पड़े हैं। खास बात यह है कि दुनिया की प्रमुख शक्तियों के साथ परमाणु समझौते के बाद ईरान में यह पहला चुनाव है। क्या इस चुनाव के बाद अमेरिका जैसे देशों के साथ ईरान के संबंधों में बदलाव आएगा? इस सवाल की पड़ताल करें उससे पहले जानते हैं ईरान का राजनीतिक तंत्र किस तरह काम करता है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर AK पाशा।
पार्लियामेंट तो हर पार्लियामेंट की तरह है, वहाँ मजलिस
جو کہ 290 ممبرز وہاں بیٹھتے ہیں اور پورے بلز اور فائنینشیل بلز وغیرہ سب پاس کرتے ہیں. لیکن یہ جو سپریم لیڈر ہیں ان کا بھی دستخط بہت ضروری ہے اور وہ کئی بلوں پہ جو ہے اپنی ناراضگی جتا کے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے. جو سپریم پاور پارلیمنٹ میں ہر جگہ ہوتا ہے جیسا برطانیہ بھارت اور امریکہ میں, ایران میں نہیں ہوتا. پارلیمنٹ کچھ نہیں کر پاتی اور صدر بھی جو ہے کئی بار کچھ نہیں کر پاتے.
یعنی ایران کی راجنیتی رکشا ارتھ ویوستھا اور ودیش نیتی دیش کے سروچ نیتا کے ارد گرد گھومتی ہے جو فی الحال آیت اللہ علی خامنے ہی ہیں. لیکن ایران کے سروچ نیتا کو چننے والی اسمبلی آف ایکسپرٹس میں اس بار ایسے لوگ چن کر آئے ہیں جن کی وچاردھارا راشٹرپتی روحانی سے میل کھاتی ہے. تو کیا اس میل سے ایران کے راجنیتک تنتر میں کچھ بدلاؤ آئے گا اور راشٹرپتی روحانی کے سامنے اب سب سے بڑی چنوتی کیا ہے؟ پروفیسر پاشا,
انیشیٹیوز لینا ناممکن ہے ایرانی پولیٹیکل سسٹم میں, لیکن پھر بھی میرے خیال سے یہ جو دونوں الیکشنز ہوئے ہیں اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو اسلامی نظام ہے یا تھیوکریسی ہے یا ڈیموکریسی ہے ان کے لفظوں میں, یہ دھیرے دھیرے بدلاؤ لا رہی ہے. روحانی صاحب کا میجر چیلنج ہوگا یہ جو مجلس اور اسمبلی آف ایکسپرٹس پہ جو ان کے اثر و رسوخ بڑا ہے اس کو لے کے جو بدلاؤ وہ ایران کی پالیٹی اور سوسائٹی اور اکانومی میں لانا چاہتے ہیں ریفارمز, اس میں کچھ پیش رفت ہو سکے گی.
ایران کے سدھاروادی راشٹرپتی روحانی کے سامنے کئی چنوتیاں ہیں, لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ایران بدل رہا ہے. لیکن اس بدلاؤ کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس کے پیچھے کچھ باہری کارن ہیں یا بدلاؤ ایران کے سماج کے بھیتر سے آ رہا ہے؟ بھارت کے پورو ودیش سچیو مچکن دوبے کہتے ہیں,
حال کی گھٹنائوں کو دیکھ کر یہ سپشٹ ہے کہ وہاں کچھ بدلاؤ آئے ہیں. مکھیہ کارن یہ ہے کہ ایران نے اپنے کو دنیا کی جو مول دھارا ہے اس سے الگ تھلگ کر لیا تھا. اس کے اوپر بہت گمبھیر اور بہت ویاپک سینکشنز لگائے جا رہے تھے اور اس کے چلتے وہاں کی آرتھک استھتی کرمشہ کمزور ہو رہی تھی. اس لیے وہاں کے نیتاؤں نے ایک اپنی واستوکتا کا پریچے دیا ہے اور وستو استھتی کو دھیان میں رکھتے ہوئے ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس طرح سے اپنے کو الگ تھلگ نہیں رکھیں گے.
یدی اس بات کو مان لیا جائے کہ ایران بدل رہا ہے اور وہاں کے لوگ, وہاں کا سماج اور وہاں کے نیتا باقی دنیا سے الگ تھلگ نہیں رہنا چاہتے, تو کیا یہ مانا جائے کہ ایران کی راجنیتک ویوستھا بھی بدل رہی ہے؟ پورو ودیش سچیو مچکن دوبے,
میں یہ نہیں سوچتا ہوں کہ وہاں کے راجنیتک ویوستھا کو بدلنے یا وہاں جو گورننس سسٹم جو ہے اس کو بدلنے کے دشا میں کسی آمول پریورتن کی یہ نشانی ہے, کیونکہ جو دھارمک لیڈرز جو ہیں وہ جب سے ایران میں کرانتی ہوئے تب سے پاور میں ہیں. انہوں نے اپنی شکتی کو بڑھایا ہے, انہوں نے اپنے آرتھک طاقت بڑھائی ہے, بہت فاؤنڈیشنز بنائے ہیں, اس فاؤنڈیشنز کے ذریعے ان کی لگاتار آمدنی آ رہی ہے. اگر ہم سوچیں کہ یہ پریورتن وہاں ایک ایران ریولوشن جیسے کہ عرب ریولوشن ہوا اس کو لانے کی دشا میں ہے, تو میں کہوں گا کچھ سمبھاونا تو اس سے ضرور پیدا ہوئی ہے, لیکن وہ دلی بہت دور ہے.
ایران کو اپنی چھوی بدلنے میں ابھی وقت لگ سکتا ہے, لیکن اس چناؤ راشٹرپتی روحانی کو ایران کا یوا کس طرح دیکھ رہا ہے؟ اچھ ادھیان کے لیے بھارت آئیں ایران کی چھاترا منیر کہتی ہیں,
سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس الیکشن میں بہت سارے لوگ حصہ لیا, تو یہ بہت بڑی بات ہے. ابھی بھی ہمارا اندر امید ہے کہ ایران میں تبدیلیاں آنی چاہیے. تو دوسری بات یہ کہ جو لوگ منتخب ہو گئے, الیکٹ ہو گئے, تو وہ بہت نئے ہیں, جوان ہیں, ان کے اندر ایکسپیرینس اتنی نہیں ہے پارلیمنٹ میں حصہ لینے کے لیے. پھر بھی ہم نے ان کو ووٹ دے دیا ہے اور امید کرتے ہیں کہ ان کا جو نیا نیا سوچ ہے ایران میں نئی نئی تبدیلیاں ضرور لائے جو ہماری بھلائی کے لیے ہوں.
ایران کے چناؤ اور چناوی نتیجوں سے کچھ دلچسپ باتیں بھی سامنے آئی ہیں, جیسے یہ کہ دیش کے یوا اور سوشل میڈیا نے ان چناؤں میں اہم بھومکا نبھائی ہے. ایران کی آبادی میں لگ بھگ 60% لوگوں کی عمر 30 ورش سے کم ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا جنم اسلامک کرانتی کے بعد ہوا تھا. ایران کے یوا نے ان چناؤں کے ذریعے یہ سنکیت دیا ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ ادھک سے ادھک جڑنا چاہتے ہیں, وہ اپنے لیے ادھک آزادی اور اپنے دیش کے لیے بہتر ارتھ ویوستھا چاہتے ہیں. राष्ट्रपति रूहानी और उनके सहयोगियों ने चुनाव में जिस तरह सफलता हासिल की है, उससे ये संकेत भी मिलता है कि रूहानी आने वाले समय में आयतुल्ला अली खामेनेई की जगह देश के नए सर्वोच्च धार्मिक नेता भी बन सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो ईरान की घरेलू और विदेश नीति पर इसका गहरा असर पड़ेगा, जिससे दुनिया को देखने का ईरान का नजरिया और ईरान को देखने का दुनिया का नजरिया दोनों बदल सकते हैं। संदीप सोनी, बीबीसी, दिल्ली।
इस रिपोर्ट से पहले हम वाशिंगटन में बात कर रहे थे ब्रजेश उपाध्याय से, लेकिन उनसे संपर्क टूट गया था। अब हमारा संपर्क फिर स्थापित हो गया है। ब्रजेश, बात हो रही थी बर्नी सैंडर्स की जीत की। कितना बड़ा झटका है ये परिणाम हिलेरी क्लिंटन की संभावनाओं के लिए?
देखिए रेहान, जैसा कि आप बता रहे थे पहले शुरू में, बर्नी सैंडर्स के अभियान को जैसे ऑक्सीजन मिल गया हो इस मिशिगन की जीत से। ये वो राज्य है जहां चुनाव से पहले तक हिलेरी क्लिंटन एग्जिट पोल्स में 20 अंक से आगे चल रही थी, तो अब जाहिर है ये बड़ा झटका है। और यहां जो सैंडर्स का काफी हद तक जो कह रहे हैं लोक लुभावन मैसेज या पॉपुलिस्ट मैसेज, वो माना जा रहा है कि कारगर रहा है। ये वो राज्य है जहां अमेरिका की कार इंडस्ट्री फली फूली, लेकिन पिछले 10-15 सालों में विदेशी कारों ने उन्हें भारी चोट पहुंचाई है और हजारों नौकरियां वहां से गई हैं। सैंडर्स ने हिलेरी क्लिंटन पर उन व्यापार समझौतों के लिए हमला किया जो उनके पति बिल क्लिंटन के शासन के दौरान किए गए थे, और हिलेरी ने भी उन समझौतों का समर्थन किया था। अब वहीं जहां अफ्रीकी अमरीकी यानी काले वोटर्स की बहुमत है, वो राज्य है मिसिसिपी, वहां हिलेरी बहुत बड़े अंतर से जीत रही हैं। और वहीं कल मिसिसिपी में नजर भी आया कि वहां उन्हें जो डेलीगेट्स मिलते हैं वो काफी बड़ी तादाद में। अगर वक्त हो तो मैं जरा से रिपब्लिकन की भी बात कर लूं।
जी हाँ, रिपब्लिकन ब्रिटिश, क्या हम ये तय माने अब कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद के लिए उनके उम्मीदवार होंगे ही, कि अब कोई शक है?
नहीं रेहान, अभी ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये जरूर है उनकी गुड्डी अभी भी चढ़ी हुई है। कल 3 राज्यों में उन्हें जीत हासिल हुई, और वो भी तब जबकि रिपब्लिकन पार्टी के कई गुटों ने उनके खिलाफ लाखों डॉलर की बारिश करके विज्ञापनों की बौछार की है। लेकिन असली इम्तिहान है अगला फ्लोरिडा और ओहायो में, और अगर वहां भी वो जीतते हैं तो शायद किसी के लिए भी उन्हें रोक पाना असंभव हो जाए, क्योंकि फ्लोरिडा और ओहायो में विनर टेक्स ऑल राज्य हैं ये। क्योंकि अगर वहां जो भी जीता तो उस राज्य के सभी डेलीगेट आपको मिलते हैं, जबकि इन अभी तक क्या होता रहा है कि जिस अनुपात में आपको वोट मिले उसी अनुपात में डेलीगेट्स मिलते हैं आपको, और यही डेलीगेट्स आखिरकार जाकर के जुलाई में जब कन्वेंशन होता है राष्ट्रीय कन्वेंशन, उसमें औपचारिक रूप से उम्मीदवार को चुनते हैं। तो ये कह सकते हैं कि उन काफी एक जबरदस्त मोमेंटम में है डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन अभी भी राजनीति में जैसा अक्सर हम लोग कहते हैं आखिरी लाइन नहीं लिखी गई।
तो जैसे इस वक्त जब हम बातचीत कर रहे हैं, तो हम अगर ये कहें कि ट्रंप वर्सेस हिलेरी क्लिंटन फाइनली, आप सहमत होंगे इससे?
अंदाजा ये लगता है, लेकिन जैसे वही जो बार बार जो हम राजनीति में कहते हैं क्रिकेट की भाषा में कि आखिरी गेंद अभी तक नहीं डाली गई है, लेकिन सब कुछ अगर गणित देखें तो बिल्कुल जो बात आप कह रहे हैं कि ट्रंप और हिलेरी का मुकाबला होने जा रहा है। डेमोक्रेट्स में ये जरूर हुआ है कि गणित अभी भी काफी फासले से, अंतर से हिलेरी क्लिंटन के साथ है। हवा कुछ हद तक बर्नी सैंडर्स की तरफ बहने लगी है, और लेकिन परिणाम अंदाजा यही है, और ये बहुत बड़ा उलटफेर हो जाएगा अगर ये हिलेरी और ट्रंप, हिलेरी नहीं बनती है अगर डेमोक्रेट।
बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश उपाध्याय। और सभा की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने यमुना तट पर श्री श्री रविशंकर के प्रस्तावित वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल कार्यक्रम को कराने की इजाज़त दे दी है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने दावा किया है कि उनके वैज्ञानिकों ने छोटे परमाणु हथियार विकसित कर लिए हैं जिन्हें बैलिस्टिक मिसाइलों पर लगाया जा सकता है। ईरान द्वारा 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण करने की खबरें आ रही हैं। लगातार दूसरे दिन हुए इस परीक्षण पर अमरीका ने सख्त राजनयिक प्रतिक्रिया की बात कही है। यूरोपियन यूनियन यू के सदस्य स्लोवेनिया ने कहा है कि वो प्रवासियों के लिए अपनी सीमाओं पर बुधवार से सख्ती बढ़ा रहा है। स्लोवेनिया के गृह मंत्रालय ने कहा है कि प्रवासियों को देश में घुसने की इजाज़त केवल मानवीय आधार पर या फिर शरण लेने का दावा पेश करने वालों को ही मिलेगी। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में मदद की देवशीष कुमार ने। रेहान फतल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।